हेलो
हेलो हेलो
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज़ आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल्ड गिल और इंजीनियर हैं जो गिल। और आज आपके लिए बहुत सारे गीत लेके आई हूँ, लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया। वो ये हुआ है कि चूंकि पिछले जुमे को किसी वजह से हम लाइव शो नहीं कर सके और तब मैं आप सबके लिए वो गीत ढूंढ के लाई थी, मैं ये भूल गई थी कि कौन सा गीत किसने सुनना चाहा था। तो इसलिए इस पे आप मुझे पेशगी में आपसे माजरत करती हूँ कि मैं नाम भूल गई हूँ, ये नहीं बता पाऊँगी कि ये गीत किसकी फरमाइश का है। तो आप ख़ुद ही सुन लीजिएगा, खुश हो जाएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मसला तो ये है कि आपको खुश होना चाहिए, तो बस मकसद पूरा हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और अपने पसंद के गीत सुन लेंगे। तो सबसे पहले हम गीत सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसकी मुझे फरमाइश आई थी, तो पंजाब नहीं जाऊँगी फिल्म का ये गीत आप लोगों का बहुत ही फेवरेट है। तो लेकिन ख़ास तौर पर मुझे याद है किसी ने फरमाइश की थी अपने नाम के साथ, तो नाम तो मैं भूल गई हूँ कि किसने फरमाइश की थी। तो आप सब के लिए जिनका भी ये गीत फेवरेट है मेरे समेत, आप इंजॉय कीजिए।
बनने चला था राजा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। बनने चला था राजा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं लुटा। मेरी राह बनी है रेगजार में दर्द का बंजारा, मैं अश्क अश्क डूबा हूँ यार, तेरी याद ने है मारा। ना समझी का है रोग लगा, कुछ तो समझा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो। कोई दर्स पढ़ा दो हीर जी, कोई रमज सिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो। भटक रही है सीने में, सांसें अटक रही है, अपने बदन से बेघर हुआ हूँ, रूह की रासें ढलक रही है, दिल में कोई फांस लगी रहती है, आंख अंधेरा है, कांटों की डगर अनजान शहर, हम दर्द न मेरा है, एक रात न डाला है डेरा, कोई सहर दिखा दो हीर जी, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दो हीर जी, मुझे राजा बना दो।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। और हमारे कुछ लिसनर्स ने पूछा था कि हम ये लाइव कहाँ पे सुन सकते हैं। वैसे तो आप हमारी वेबसाइट पे भी लाइव सुन सकते हैं, लेकिन मैंने लिंक चार्ट बस्टर्स के पेज पर भी पोस्ट कर दिया है, आप चार्ट बस्टर्स के पेज पर भी जाएं और बराह रास्त हमारा ये शो वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। स्पेशली भारत से हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने ये सवाल पूछा था कि कहाँ सुने, तो आप अगर चूंकि हमारे पेज पर आते हैं वही मैसेज करते हैं, तो आप पेज पर जाइए तो आपको टॉप पर ही ये लिंक मिल जाएगा और आप इन्जॉय کیجیے اپنی پسند کا یہ گیت. اور ہم چاہتے تھے کہ آپ اپنے شو میں کسی مہمان کو بلائیں, تو ہم نے بات کی تھیٹر, فلم اور ٹی وی کی معروف اداکارہ ارجمند رحیم سے. تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو پچھلے رمضان میں آپ لوگوں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا اور بہت پسند کیا تھا, سنو چندا, تو سنو چندا کے جو سیکول بن رہا ہے اس رمضان کے لیے اس کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور 9 بجے وہ شوٹنگ میں ہوں گی. تو انہوں نے ہمیں اس شو سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ مجھ سے انٹرویو کر لیں, تو ہم نے ان سے ابھی ابھی انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. ان کے بے شمار ڈرامے آپ پی ٹی وی پہ بھی دیکھتے تھے اور ابھی بھی ہر چینل پہ ان کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور موجود ہوتا ہے. انہوں نے تھیٹر میں بھی بہت کام کیا اور فلم میں بھی بہت کام کیا ہے. تو سنیے ارجمند رحیم سے ہماری گفتگو, اس کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے ہم اور آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے اور آپ کی پسند کے گیت بھی.
ہاں ہیلو جی چھوٹی آپا, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام رفعت, ٹھیک ٹھاک, کیسے فون کیا؟
اچھا یہ بتائیں آپ آج آ رہی ہیں نا آپ؟
ہاں آؤں گی تو صحیح, لیکن تم لوگ میرا کھانے پر انتظار نہیں کرنا.
آپ یہ بتائیے کہ کیسا آپ کا جو کریئر ہے, کیا فیل کرتی ہیں, کیا اکمپلشمنٹ ہے, اور ایز اے ویمن آپ کتنا امپاور محسوس کرتی ہیں اور خاص طور پر اس فیلڈ میں؟
دیکھیں بیٹنگ پروز اینڈ کانس تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں اور نیچرلی ہمارے ملک کا جو ہے ایک تھوڑا مساجنسٹک پیٹریارکل کلچر تو ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں, نہ صرف میڈیا نہیں لیکن دوسری شعبوں میں بھی تھوڑا سا ہے, یو نو یہ اپر ہینڈ مین کا ہوتا ہے اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ محنت مجھے لگتا ہے کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سیریسلی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو لیں. تو انٹرٹینمنٹ میں ویسے کچھ فوائد بھی ہیں کہ عورتوں کو سیریسلی ظاہری باتیں لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہے, کمرشلز میں ہوں یا ڈراموں میں ہوں. تو پروز اینڈ کانز ہیں, آئی فیل ویری بلیسڈ ایکچولی کہ میرے ساتھ ذاتی طور پر کوئی ایسا مجھے ابسٹرکشن نہیں محسوس ہوئی اینڈ کافی میرے اسموتھ رہا ہے سر کریئر ٹریجیکٹری جو بھی جیسے بھی ہے. سو آئی ایم کوائٹ ہیپی وتھ ویئر آئی ایم.
اچھا یہ بتائیے کہ جمعے کو آپ فری ہیں نا؟
ہاں کیوں؟
وہ میں اپنی شادی کی سالگرہ کر رہی ہوں, بس اسی کے لیے دعوت دینی تھی آپ کو.
اچھا ہاں ضرور آئیں گے بھائی, بہت مبارک ہو. اوکے اللہ.
تو اب یہ بتائیے جب آپ نے اس فیلڈ میں آنا چاہا تو گھر والے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو فیملی ہے اس کی طرف سے آپ کو کوئی پریشر فیل ہوا یا کوئی پابندی آپ کو فیل ہوئی؟
I come from a very liberal family and a very progressive family. تو ان کو یہ کوئی اعتراض نہیں تھا اس لحاظ سے کہ یہ فیلڈ برا ہے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کو یہ ضرور تھی کہ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو, کیونکہ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان مڈ 90s 95 سے کہہ لیں, سمجھ لیں کہ میری یو نو کریئر کی شروعات ہو گئی تھی, اور اس زمانے میں یہ جو ہماری فیلڈ ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر کافی مطلب کم لیول پہ تھا, اتنا ڈیولپڈ نہیں تھا, اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں, پرائیویٹ چینلس تو اس وقت تک اسٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے, لے دے کر پی ٹی وی تھا اور اس زمانے میں این ٹی ایم ہوا کرتا تھا ایک پرائیویٹ چینل. تو ان کو اکنامکلی میرے لیے فکر تھی کہ آئندہ جا کر آگے جا کر اگر سپوز آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے, دوسرا آپ کے پاس کوئی ہونا چاہیے ہنر ہاتھ میں یا کوئی اسکل یا یو نو کوئی کریئر پلاننگ ہونی چاہیے اینڈ اپرچونیٹیز کے لحاظ سے. تو دے ڈڈ ٹرائی ٹو ڈسکریج می کہ نہ ہی ہو, مطلب یہ سول آپ کا یو نو پیشنیٹلی آپ اس کو فالو نہ کریں, کریئر کو سائڈ پہ ایز اے ہابی رکھ لیں. سو دے ور ناٹ ویری ہیپی, بٹ دین وین دے سو اوور دا ایئرز یو نو 4-5-6 سالوں میں کہ کافی یو نو سکسیس حاصل ہوا, فیم اکنالجمنٹ حاصل ہوئی, اس کے بعد پھر دین دے ور سپورٹیو اینڈ ریلیکسڈ.
آپ نے تو کہا کہ 95 میں شروع کیا, تو آپ آج بھی ویسی ہی لگتی ہیں, اس کا راز تو بتائے نا, کیا راز ہے؟
میرا تو بالکل بھی نہیں خیال کہ میں ویسی لگتی ہوں, میں جب آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے تو کچھ اور ہی شکل لگ ملتی ہے, بٹ تھینک یو.
نہیں ایگزیکٹلی آپ نے بہت مینٹین رکھا ہے خود کو.
آئی گیس آئی ایم بلیسڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, آئی تھنک جینیٹکس کا بھی اس میں کافی ہوتا ہے ہاتھ. میرے دونوں والدین یو نو موٹاپے کی طرف ان کا نہیں, کب اوبیسٹی میری فیملی میں نہیں ہے, سو آئی اف یو آر ریفرنگ ٹو دی فیکٹ کہ آئی ایم ناٹ اوور ویٹ, تو آئی گیس وہ تو تھوڑا بہت جینیٹک بھی ہے اور کچھ مجھے شوق بھی ہے. میں ڈانس کیا کرتی تھی یہ بہت عرصہ پہلے, آئی تھنک اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے ان سورٹ آف یو نو ہیونگ اے سپل باڈی, جو کہ اب اتنی سپل اوبیسٹی نہیں رہی, لیکن بہرحال وہ پریکٹس, وہ جو محنت تب کی بھی ہے, وہ شاید آج کام آ رہی ہے.
حسن کو تو ہوائی جہازوں سے عشق ہے. Oof, he has a deep and acute passion for flying. Meri khayal se mere sath to bas uski infatuation hi hai.
Ab zyada banne ki koshish mat karo. Maine khud Hasan ko tumhare vaare niyare hote hue dekha hai with my own eyes.
तो अर्जुमंद, आपने बहुत ड्रामों में तो बहुत काम किया और हर तरह के चैनल्स जब नहीं थे, पीटीवी पे सिर्फ ड्रामे आप देखा करते थे और अब इतनी एक आप कह लें कि कंपटीशन है, तो आपके ख्याल में ये इतने बहुत ज़्यादा चैनल्स का होना अच्छा है? करियर के लिहाज से आप क्या समझती हैं कि ये बेहतर है इतना ज़्यादा कंपटीशन या नहीं?
मेरे ख्याल में ये है बेहतर, क्योंकि हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। जब कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन से फिर फिल्टर होकर हम देखते हैं कि बेहतर कारकर्दगी होती है लोगों की, खा वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, और ट्रेंड एस्टेब्लिश होते हैं, फिर इंडस्ट्री ऑब्वियसली ग्रो करती है, मजीद लोगों की गुंजाइश पैदा होती है और वो आते हैं। और ये हुआ है, ये हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है कि अब जो बल्कि पौध है हमारी, बहुत से जो डायरेक्टर्स हैं यंग, राइटर्स हैं यंग, एक्टर्स खासतौर पर बहुत बेहतर ग्रूमिंग के साथ एंट्री होती है उनकी। हमें तो वक्त लगा, हमें तो शुरू के ड्रामों में खुद अपने आप को देखकर अपना काम देखकर हम सीखे, लेकिन ये लोग तो पहले से थोड़े से ग्रूम होकर, और अब मैनेजर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये सारी चीजें अब आ गई हैं। सो आई थिंक वी आर सीइंग मोर एक्सपोज्ड पीपल एंड अ बेटर क्लास ऑफ पीपल कमिंग इनटू द मीडिया, व्हिच इज एक्सीलेंट। तो कंपटीशन तो अच्छी बात है, मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि पीटीवी जो है वो अपना जो है किरदार वो अदा नहीं कर रहा सही से, वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, अरसे से नहीं हो रही। तो ये तो सिर्फ आप देखिए, कराची में बेसिकली एक सेंटर बन गया है, हब ऑफ मीडिया एंड टेलीविजन, लेकिन जो लोग क्वेटा में हैं, जो आर्टिस्ट पेशावर में हैं, जो आर्टिस्ट इस्लामाबाद में हैं, और बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज और बहुत से आर्टिस्ट जो लाहौर में हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। एंड इसकी सोल्यूशन ये नहीं बन रही कि यदि कराची बेस्ड चैनल्स उनको नेसेसरली बुला बुला कर यहाँ पर काम नहीं दे रहे, तो ये थोड़ी सी विद इन द कंट्री एक आई फील थोड़ी सी अनफेयरनेस है, एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड द स्टेट चैनल्स नीड टू सर्टेनली लुक इनटू दिस, क्योंकि उनके आर्टिस्ट का बहुत बुरा हाल है।
सॉरी फहद, सॉरी मेरी जान, पूरा प्लान था जल्दी आने का, लेकिन वो बॉस ने अर्जेंटली बुला लिया ना,
और मोबाइल फोन भी ऑफ करना बॉस ने ही कहा था।
अरे नहीं, वो तो बैटरी डेड हो गई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला चार्ज करने का।
तो अर्जुमंद, फिल्म और ड्रामे के दोनों में आपने काम किया है, आपको क्या लगता है कि कहाँ बेहतर आपने महसूस किया है, या फिर बिल्कुल एक ही जैसा है, कोई खास फर्क नहीं है?
वेल, एज एन एक्टर मेरी शुरुआत ही थिएटर से हुई थी, तो मेरा तो ऑब्वियसली प्रेफर्ड मीडियम अभी भी एक्चुअली थिएटर ही है, जहाँ पर एक्टर जो होता है वो ज्यादा इन कंट्रोल होता है ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस। टेलीविजन एंड फिल्म दोनों एक्चुअली डायरेक्टर्स मीडियम है, लेकिन इसका अलग चस्का है और इसका अपना मजा है, और जाहिर बात है ये ज्यादा बड़े स्केल पर जाती हैं चीजें, और एक्नॉलेजमेंट और आपको जो मिलती है, तो इस लिहाज से इसमें अलग मजा है और उसमें अलग मजा है।
अच्छा, तो ये बताइए, इतने आपने बहुत हिट आपने ड्रामे दिए हैं, तो आपको कौन सा ड्रामा आपके दिल के ज्यादा करीब है, और क्या समझती हैं आप एज एन अर्जुमंद किस में ज्यादा आप मौजूद हैं?
मैं अपने आप को आई डोंट थिंक जिस कस्म के मैंने किए हैं किरदार, और क्योंकि जिस कस्म की राइटिंग होती है जनरली और जिस कस्म की कहानियां हम सुना रहे हैं ज्यादातर, तो मेरी जाती जिंदगी से तो वो कुछ दूर ही है। बट इस लिहाज से कि मैंने इंजॉय क्या किया, मुझे लगता है कि मैंने बल्कि जो पहले काम किया हुआ है 90s की दिहाई में, और शुरू की जैसे एक पहली फिल्म की थी बुशान सारी साहिबा की लिखी हुई, वो पहली स्क्रिप्ट थी और उसमें उनकी बेटी बनी हुई थी, और वो बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक भी था, नीली धूप टेलीफिल्म का नाम था, और बहुत आला वो चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि हम बेहतर काम और ज़्यादा सॉलिड काम और ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग काम हम तब कर रहे थे, और अब हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, ट्रेंड सेटर्स नहीं रहे एनी मोर, जो कि 80s में हमने ड्रामे बनाए हैं और 90s तक भी बनाए हैं, अब हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो उस ज़माने के ड्रामे ज़्यादा मुझे पसंद है, अपना काम भी ज़्यादा पसंद है। कुरतुलैन बहुत मकबूल हुआ था, वो भी एक सिंगल प्ले ही था, और इस तरह से आई थिंक बड़ी आपा में काफ़ी मुझे मज़ा आया, क्योंकि अगेन वो मेरी अपनी ज़ाती शख्सियत से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे बहुत बल्कि शुरुआत में बहुत मुश्किल पेश आई थी इस कैरेक्टर को करने में, क्योंकि वो इंतहाई बेवकूफ़ औरत भी थी, और लेकिन चालाक बनने की कोशिश भी कर रही थी, और उसके ऊपर आपको मतलब वो था डायरेक्टर की मुझे वो थी कि आप इसको लवेबल भी बनाएं, कि इस पे आपको तरस भी आना चाहिए और प्यार भी आना चाहिए,
और थोड़ी सी जैसे शोख, मुझे लगा ये जो शोखी का पहलू है ना, शायद वो आपकी पर्सनैलिटी में है।
अगर आप कभी मुझसे मिलेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये ओपिनियन रहेगा।
अच्छा, तो अच्छा अर्जुमंद, ये बताइए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ये सारा मामला चला और लक्स स्टाइल अवार्ड का, और फिर आप जानती हैं एंजेलिन ने इनकार करो शुरू किया, तो ये मामला किस हद तक मौजूद है? इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री, पूरी सोसाइटी में, और कितना फायदा होता है इन तमाम जो आप कैंपेन्स शुरू करते हैं, कुछ फर्क पड़ता है?
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फर्क इस वक्त जो हम पैदा कर सकते हैं बाय हैविंग दीज मूवमेंट, वो ये है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो, एक प्रोसेस. क्योंकि अभी तक तो क्या ये होता आ रहा, हमने देखा है कि ये चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, हम सबके साथ हुई हैं, छोटे मोटे लेवल पे, किसी के साथ ज्यादा लेवल पर जाती हुई हैं और किसी के साथ कम, लेकिन बहरहाल हुई सबके साथ, कुछ ना कुछ हर औरत के साथ हुआ है. और वो सिर्फ इस मीडिया इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर जगह, हर सतह पर. तो कम अज कम इन मूवमेंट्स ने ये किया है कि पहले तो बहुत बैकलैश भी मिला है, खासतौर पर मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये क्या और ये तो चलता है और ये तो होता है. तो ये मतलब हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि नहीं, ये नहीं चलता और ये नहीं होना चाहिए, और आप अपना भी देखें. और इस तरह से मतलब जज नहीं करना चाहिए कि औरत अगर उसने लिबास ऐसा पहना हुआ है तो आपको खुली छूट नहीं है, दैट मीन्स कि आप उसके साथ ज्यादती कर सकते हैं या उस पर जुमला मार सकते हैं, ये नहीं है आपको इजाजत. और डिसेंट मैन तो डिसेंट ही रहते हैं बहरहाल, मतलब उनको नहीं फर्क पड़ता. तो ये इनडिसेंसी क्यों आ जाती है बीच में और फायदा नहीं उठाना चाहिए? तो एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल आर अपकमिंग ये जो मॉडल्स हैं, इमान सुलेमान, ये साइमा रशीद, जनरेशन जैसा ब्रांड जिन्होंने रिजेक्ट किया है, मतलब अपने अपनी नॉमिनेशन रिजेक्ट किए हैं और कहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे ऐसी चीज का जो कि एक हरासर को सपोर्ट कर रही है.
अच्छा अर्जुमन, एक बात मैं कहना चाहूंगी, चूंकि अभी तक फैसला नहीं हुआ तो क्या ये सही है कि हम अदालत के फैसले का इंतजार किए बगैर किसी को मुजरिम कह दें?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अभी फैसला बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जब तक फैसला आ नहीं जाता हमें फिर न्यूट्रल ही रहना चाहिए ना. मुझे तो ये नजर आ रहा है कि न्यूट्रलिटी नहीं है, लोगों ने एक्चुअली तो अपने जहन बना लिए हैं. और इस तरह से किसी को सपोर्ट करना और किसी को नॉमिनेट करना एज बेस्ट एक्टर, दैट मीन कि आपके लिए ये इतनी बड़ी बात ही नहीं थी. अगर वो कल को साबित हो जाता है कोर्ट के थ्रू कि ये वाकई हुआ है और उस पर जुर्माना होगा और वगैरह जो भी होगा सजा मिलेगी, तो फिर क्या होगा? आपने तो उसको उस दौर में सपोर्ट किया हुआ है, क्या पता अवार्ड भी आप दे चुके हों उसको उसी दौर में जब ये तहकीक चल रही थी. तो ये वो वक्त नहीं है, ये वक्त है कि आप न्यूट्रल रहें, ना आप उनको सपोर्ट करें ना आप इनको सपोर्ट करें.
सही.
आए, थक गई मैं.
देखा खामखा कितनी थक जाती हो. और फरियाल, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूं यार, आखिर ये दूसरी नौकरी करने की क्या जरूरत है? देखो ना, हम दो ही तो हैं, माशाल्लाह हमारी जिंदगी इतनी बेहतर गुजर रही है, तो फिर ये दूसरी नौकरी तुमने क्यों ली?
बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस दूसरी सैलरी के जितने पैसे आ रहे हैं एक सेविंग स्कीम में जा रहे हैं जो 3 साल बाद डबल हो जाएंगे. हमारा ही मुस्तकबिल कितना ब्राइट होगा.
ये बताइएगा कि आपका क्या तज्जिया है, क्या वो वक्त आपके ख्याल में ज्यादा मायारी काम हो रहा था या अब ज्यादा मायारी काम हो रहा है, या आप समझती हैं कि बस कोई खास फर्क नहीं है? यानी थोड़ा सा पहला आप एरा अगर देखें और अब आप देखें तो उसमें आप कितना फर्क महसूस करती हैं एज एन एक्टर?
मैं ये फर्क देख रही हूँ कि देखिए, जहाँ तक टेक्निकल फैसिलिटीज हैं, जहाँ तक हमारा शूट करने का स्टाइल है, जहाँ तक हमारी एक्टर्स की भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो वो आज बेहतर हैं. हमारे पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं फील्ड में और माहौल भी बेहतर हुआ है एक हद तक, और ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं लोग, काम भी बढ़ गया है. तो इन चीज़ों के लिहाज से तो काम डेफिनेटली बहुत बेहतर है. साउंड एंड लाइटिंग और टेक्निकलिटी एंड कैमरा वर्क एक्सेट्रा, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं पहले से. लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉन्टेंट है, जो आला सतह का हम काम कर चुके हैं पहले इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेंट डायलॉग राइटिंग एंड एक्सेलेंट कंटेंट, मतलब कॉन्सेप्ट्स ही इतने अच्छे होते थे और उन पे बहुत वक्त लेकर और तहम्मुल से काम किया जाता था, वो बहुत आला था. वो मैं अब मिस करती हूँ. मुझे लगता है हम बहुत सतही काम कर रहे हैं, अपर लेवल्स के बहुत फ्रिवलस सा हो रहा है काम, लेकिन उसमें बहुत बेहतर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है. असल में चैनल भी तो बढ़ गए हैं, तो अच्छा काम तो हमेशा कम ही होता है, ज्यादातर तो टाइम स्लॉट्स को फिल करने के लिए बन रहे होते हैं ड्रामे, तो बहुत से अच्छे ड्रामे मिस भी हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि इतना शोर मच रहा है.
तो अर्जुमन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया.
थैंक यू सो मच. थैंक यू.
इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देगा.
कितनी मुख्तलिफ आंखें हैं तुम्हारी.
मुझे मेरा सामान दे दीजिए, बस एक ही बात है इनके पास, शादी क्यों नहीं कर लेती. शादी शादी शादी.
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और अभी आपने इंटरव्यू सुना थिएटर फिल्म और टेलीविजन की मारूफ अदाकारा अर्जुमंद रहीम का और अब चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। मोहम्मद तारक चौहताई ने वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम को सलाम कहा है और अंजुम को एक शेर डेडिकेट किया है। लिखते हैं, वाबस्ता तेरी याद से कुछ तलखियां भी थीं, अच्छा था जो तूने फरामोश कर दिया। मुझे लगता है शेर में कुछ गड़बड़ कर दी आपने लिखने में, लेकिन अंजुम हंस रहे हैं सुन के क्योंकि उनके ख्याल मेरे ख्याल में उन्होंने आपको फरामोश नहीं किया। दरवेश बागबटन बारामूला कश्मीर से तौसीफ शौकी लिखते हैं कि मैं शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और ये रमज़ान से पहले का लास्ट शो है, तो आप सबको और जितने भी सुनने वाले हैं पाकिस्तान में हर जगह जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उन सबको पेशगी मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया तौसीफ। आशिक खास खैली और उनके दोस्तों ने सिंधी रेडियो लिसनर्स क्लब नवाब शाह से लिखा है कि मैं और मेरे तमाम दोस्त बहुत शौक और लगन से आपका शो भी सुनते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की बाकी नशरियात भी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका और आपके दोस्तों का। तो लंबा खानेवाल से मोहम्मद अकरम लिखते हैं कि रमज़ान से पहले ये आखिरी शो है। जी बिल्कुल, तो कहते हैं कि अगला शो रमज़ान में होगा और वो वक्त जब आपका शो ऑन एयर होगा हमारी तरावी का टाइम होगा, लिहाजा हमें आप इस एक माह में दुआओं में याद रखिएगा। तो वो वक्त जब आप तरावी में होंगे तो तब आप हमें याद रखिएगा, तो हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार गुरमिंदर ग्रिवाल और विशर उमर, फैज़ अहमद खान बलोच, मीरनवाला झांग, अजैब बिन मुमताज़, मोहम्मद खान बलोच और चौधरी शुएब अकदस और सादिया अहमद, इन्होंने अभी अभी हमारे जो शो सुन रहे हैं और उन्होंने हमारे लिंक पर बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शो सुनते रहिए, अगले गीत की तरफ चलते हैं और ये मुझे याद है कि किसने फरमाइश की थी, खालिद उमर ने मियाँ वाले से फरमाइश की थी इस गीत की। तो खालिद उमर साहब इंजॉय कीजिए आप अपनी पसंद का ये गीत।
प्यार ना लेना सही उसे नल वेख लिया कर, प्यार नल ना सही उसे नल वेख लिया कर, बीमारा नु शफा मिल जाती है। प्यार नल ना सही उसे नल वेख लिया कर, बीमारा नु शफा मिल जाती है। प्यार नल ना सही दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेन तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेन तकना बड़ा ही जरूरी है। तू जे न दिसे ते ते चुम लईदा है तेरा दर, बीमारा नु शफा मिल जाती है। प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही खलो दिया, रो रो हस दिया, हस हस रो दिया। सारा सारा दिल तेरी रावच खलो दिया, रो रो हस दिया, हस हस रो दिया। सुख मिल जाता है, सुख मिल जाता है, मैं दिए जा तेरे ते नजर, बीमारा नु शफा मिल जाती है। प्यार नल ना सही प्यार नल ना सही
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है और आप सुन रहे हैं हमारा म्यूजिक का हफ्तेवार प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स. खुशदार से हमें एक कॉल आई थी इस गीत के दौरान, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, तो आप हमें दोबारा कॉल कीजिए. नंबर है 0800777789. तो खुशदार से हमारे वो लिसनर जिन्होंने हमें कॉल की थी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, हमें कॉल बैक कर सकते हैं. इस वक्त हमारे साथ तौंसा शरीफ से मौजूद हैं जफरुल्ला खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जफर साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी जी, पहुंच रही है.
जी, मेरी तरफ से वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम तमाम सामीन को पेशगी रमजान मुबारक.
बहुत शुक्रिया.
पिछले हफ्ते आपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पेश की थी.
बस समझ लीजिए कि कभी कभी हमें भी कोई ना कोई काम पड़ जाता है.
जी, हमें एक हफ्ता इंतजार कर दे, उसके बाद वो पुरानी रिकॉर्डिंग.
बिल्कुल सही कह रहे हैं. और आपको पता है ऐसा बहुत ही कम होता है.
ये होता है, एक दो दफा पहले भी इस तरह हुआ था, रिकॉर्डिंग आपने पेश की थी.
अच्छा,
तो इससे पिछले जो में आपने हमारी फरमाइश पूरी की, उसके लिए हम आपके शुक्र गुजार हैं.
थैंक यू. चलो, कोई तो ऐसी कॉल आई जिसकी फरमाइश पूरी होगी और शुक्रिया की कॉल आई, वरना मैं पता है क्या तवक्को करती हूँ, अभी कॉल आएगी और लोग शिकवा करेंगे क्योंकि मुझे गीत मिलता ही नहीं है लाइब्रेरी से, मैं क्या करूँ.
आपने तो हमारी फरमाइश पूरी की है इसके लिए, तो हमारे अगले हफ्ते की फरमाइश है, नोट कर रहे.
बोलिए.
ये फिल्म परिस्तान का नगमा है, नसीम बेगम की आवाज में.
जी बोलिए, कौन सा?
मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है.
ठीक है, ये है हमारे पास, मुझे अभी से पता है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जफरुल्ला खान साहब. अल्लाह देता शाकिर साहब से बात करते हैं जिन्होंने हमें विहाड़ी से कॉल की है. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम मैडम जी.
जी कहिए.
हाँ, अभी अताउल्लाह ईसा खेलवी को सुन रहे थे, तो ये हमारे सफीर अहमद मलक की भी पसंद होती है और काफी लिसनर है जो जिनकी ये फरमाइश थी. अगर कोई गीत ना भी गा सके, हम आपको जब सुन लेते हैं तो दुनिया जहान के जो सिंगर हैं, ऐसा लगता है हमने उनको सुन लिया है.
क्या बात है, क्या बात है.
कोई फरमाइश ना भी
आपने तो खुश कर दिया मुझे.
आपको हम तो सुनना चाहते हैं, बाकी ये तो नेट पे और ये सारा दिन की तो सॉन्ग सुनना चाहते. प्रोग्राम का मकसद तो है कि हम सादिया देवरान साहब को सुने एक घंटे के लिए, हम तनगोश होकर.
खुश कर दिया आपने
तो. बाकी हमारे जी जी, और वो कौशल जापानी और पठाने खा था, शायद हो सके तो वो कभी लगा देना, ना भी लगे तो कोई
नहीं. नहीं, मैंने आपकी पता है क्या,
मैं भी यही प्रोग्राम का
जी जी रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर इसी तरह से. और मैं आपको बताती चलूं, आपने जब फरमाइश की थी ना, तो मैं गीत ढूंढ के ले आई हूँ पठाने खान साहब की, हमारे पास कई सीडीज हैं, तो मैं जरूर नेक्स्ट में कुछ भी हो आपकी फरमाइश.
कभी हम इंशाल्लाह एक बार पठाने का बड़ा अच्छा गाते हैं, उनको भी हमें कभी लेंगे.
बिल्कुल ठीक.
और हमारे इंटरनेशनल रेडियो फोरम पिपली अड्डा के जितने भी दोस्त हैं, फयाज भुट्टा साहब हैं, मास्टर फयाज है, रोड
जी, उनकी कॉल ड्रॉप होगी. पिपली अड्डा विहाड़ी के इंटरनेशनल रेडियो के जितने भी लिसनर्स भी हैं या जितने भी लोगों से वाबस्ता है, उन सब का बहुत शुक्रिया कि वो हमारा प्रोग्राम इतना पसंद करते हैं. अर्शद नदीम घलू ने कॉल की है भक्कर से. अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम.
जी अर्शद
जी. सादिया जी, थोड़ी सी मुझे आपसे शिकायत
मुझे
है.
मुझे पता है आपकी फरमाइश पूरी नहीं की मैंने.
नहीं, पता है क्या. हाँ. बात तो सुने. हाँ. शायद आपको मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं लगती, भारी भरकम जो है, तो आप मेरी कॉल जरा जल्द ड्रॉप कर देती हैं.
नहीं, इसलिए कि बाकी सबको भी टाइम मिले ना.
जी जी. हाँ. वो तो ठीक है. अच्छा, और दूसरा ये आपकी अमानते हैं मेरे पास.
कौन सी?
एक
कैलेंडर भेज रहे
हैं आप गिलगती. हेलो.
हाँ जी बोलिए.
हसन गिलकती साहब ने मुझे 2010 में आपके रेडियो से सुना था, साकिब अल इस्लाम प्रोग्राम डेली किया करते थे.
अच्छा.
तो उन्होंने मुझे आप 2018 में जी रब्ता किया और आपके लिए सलाम दिए
हैं,
और वो मुझे सियाचिन महाज पर सुना करते थे 2010 में.
बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच.
वो आपको बहुत बहुत सलाम कह रहे थे, मैं काफी अर्से से ये सलाम भूल जाता था. और मास्टर फयाज रोडी साहब,
ठीक है,
वो भी आपको कलूर कोर्ट से सलाम कह रहे हैं.
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया.
आपके खामोश लिसनर हैं, काफी अर्से से सुनते हैं.
चलिए अब पहुंच गए.
इसकी फरमाइश है, पहले मेरा लता जी का गीत मिला है जो मैंने पहले कहा था,
मैंने आज निकाला था. एक दफा मुझे बताइएगा भला कौन सा आपने कहा था, मुझे लगता है मैंने निकाला
जी,
है.
मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी.
हाँ,
होती है दिल बरों की इनायत कभी.
नोट मैंने कर लिया है ये वाला गीत जो है ना
जी,
और मैं यही सुनाऊंगी. ठीक है, क्योंकि मैं भूल आई हूं.
सुनने वाले और जल्दी से कोई दोस्तों को सलाम दूंगा. और मैंने एक आपके रिक्वेस्ट की थी, अंजुम साहब को मैंने नंबर भी दिया था, वो अपनी हमारी न्यूज रीडर है ना, مسارا شاہین ہمارے ٹرانسمیٹر اب آپ گریڈ ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں پرانے لوگ وہ آئیں آپ کے پروگرام کے ذریعے.
ٹھیک ہے,
تو آپ ان کو لیں, میں نے کئی بار آپ کو نمبر بھی سینڈ کیا ان کا.
بالکل صحیح, ہم پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ مجھے اس پہ پھر سے لکھ کے بھیج دیجئے گا.
میرے ساتھ ندیم گلو, حسن ندیم گلو, احمد ندیم گلو, اور میری طرف سے ماسٹر فیاض روڈی صاحب اور اللہ دیتا شاکر اور تمام سننے والوں کو سلام, اور مسرہ شاہین کو.
اور گلہ دور ہو گیا
جی, اور اگلے ہفتے کی اگر وہ لتا جی کا گانا نہ ملے نا تو فلم ہے میرے خیال میں 7 لاکھ, نور جہاں کی آواز ہے, لاکھ بار صدقے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح کے کچھ بول ہیں.
بالکل, اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. اور بالکل میں سمجھتی ہوں اپنے تمام لسنرز کی شکایتیں بھی, اور پھر یہ کہ وہ اتنے شوق اور اتنی محبت سے ہمیں میسج بھی کرتے ہیں. میں کبھی اتنی ڈیڈیکیشن سے کہیں خط نہیں لکھ سکی. مجھے بھی بہت سے پروگرام پسند ہوا کرتے تھے, یقین کیجئے, لیکن میں بہت آپ کہیے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے, اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ باقاعدہ خط لکھتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, اور ہمارے شو میں کالز کرتے ہیں, اتنی دیر آپ ملاتے رہتے ہیں, تو میں سب کی بہت شکر گزار ہوں, اور ہم میں دل سے ہم لوگ سب قدر کرتے ہیں. تو اگر تھوڑا بہت کبھی کچھ ہو جائے تو آپ کا شکوہ سر آنکھوں پر, لیکن آپ گمان مت رکھا کریں کوئی برا اپنے دل میں, کہ ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ کسی کو ہم زیادہ وقت دیں کسی کو کم, بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف. اس گیت کی بھی کافی ہمیں فرمائش آئی تھی, اور آپ ہی لوگوں کے لیے میں نے یہ کچھ نئے گیت منگوائے تھے, تو آپ سب لوگ اس گیت کو انجوائے کیجیے. اور یہ بتاتی چلوں کہ اس گیت پر بھارت میں بہت اچھا ریئیکشن, اور خاص طور پر ہمارے جو سردار بھائی ہیں انہوں نے بہت سراہا تھا اس گیت کو, اور اس کی لینگویج کو, اور اس کے جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے یہ پکچرائز ہوا ہے, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ویڈیوز بھی بنائی تھیں جب یہ آن ہوا لوڈ ویڈنگ کا یہ گیت. تو آپ سنیے اور انجوائے کیجئے.
سنگ دانی جٹ کرے گل تگڑی, سنگ دانی جٹ کرے گل تگڑی, سچل تودیا تو آؤں گگری, ہاں سچل تودیا تو آؤں گگری, دل مور میل چپنا دا تیرے لئی, دل مور میل چپنا دا تیرے لئی, جون جوگی حاج کد کر دے, گلا جگدیا تیرے پیچھے جر دے, نگلا جگدیا تیرے پیچھے جر دے, نہیں تو پیو تو کسے دے بھی نہیں ڈر دے, گلا جگدیا تیرے پیچھے جر دے, نہیں تو پیو تو کسے دے بھی نہیں ڈر دے, گلا جگدیا تیرے پیچھے جر دے, نہیں تو پیو تو کسے دے بھی نہیں ڈر دے.
Hey, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਏ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਏ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਰ ਤੇ
ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੀ ਉਰਦੂ ਸਰਵਿਸ ਸੇ ਆਪ ਸੁਨ ਰਹੇ ਹੈ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰਸ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਾਦਿਆ ਜ਼ੇਬ ਰਾਂਝਾ ਔਰ ਹਮੇ ਅਭੀ ਅਭੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਗੀਤ ਥਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਉਨਕਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੁਣਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਕਾ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇ ਯਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਸਕੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਤੋ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਚਲੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਵੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਆ ਤੋ ਆਪ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੀਜੀਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਘਲੂ ਜਿਨਕਾ ਅਭੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਥੀ ਉਨਕਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੋਂ ਸੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਜੀ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹੀਏ ਸ਼ੋ ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਜੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਆਪਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ ਸਾਦਿਆ ਅਹਿਮਦ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਅਭੀ ਭੇਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯੂੰ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਆਪ ਨਾਮ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਤੋ ਆਪ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਪਸੰਦ ਆਪ ਬਤਾਏ ਹਮ ਸੁਣਾਏ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੋ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਆਪ ਹਮੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਤੋ ਹਮ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੋ ਗੀਤ ਵੈਸੇ ਮੁਝੇ ਔਰ ਅੰਜੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਤੋ ਹਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋ ਲਗਾ ਹੈ ਵਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹੂਟਾ ਸੇ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਮੁਝੇ ਸਭ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਗਤੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰ ਤੋ ਆਪਕੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਕਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਬਤਾਈਏ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਹਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਤਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਸੇ ਹੂੰ ਬਤਾਈਏ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਤੇ ਮੁਝੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਝਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤਬੱਸਮ ਡੀ ਜੀ ਖਾਨ ਸੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕੀ ਤੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਾ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ 08007778789 ਪਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤਬੱਸਮ ਡੀ ਜੀ ਖਾਨ ਸੇ ਆਪਕੀ ਪਸੰਦ ਕਾ ਇਹ ਗੀਤ
ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਕਸਮ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਕਸਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਕਸਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਫਿਰ ਨਾ
दुख सारे इस महफिल से उठ जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा, ना
वेलकम बैक। वैसे रिजवाना, आपने इतने दुखी गाने की फरमाइश की थी, मैं गाना सुनते सुनते दुखी हो जाती हूँ ना, तो ऐसे तो ना किया करें ना। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैंने ये तो कह दिया कि भटिंडा से हमारे लिसनर्स, लेकिन मैंने अशोक जी का नाम ही लिया, तो अशोक ग्रोवर जी माजरा चाहती हूँ, इस गीत के दौरान मुझे ये फीलिंग आई तो मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, तो आपका और प्रवीण जी दोनों का बेहद शुक्रिया। और वैसे जितने भी हमारे सरदार लिसनर्स हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी पाकिस्तान की साइड पर देखूँ तो हमारी पंजाबी जो है, हमने उसको बहुत आप कह लें कि मिक्स कर दिया है। मैं खुद भी जब पंजाबी बोलती हूँ तो उसमें आधी उर्दू शामिल कर देती हूँ और आधी पंजाबी, चूंकि दोनों बहुत मिलती जुलती जुबानें हैं, सिस्टर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है इनको, तो शायद इसलिए भी हम गैर महसूस तरीके से उर्दू के लफ्ज़ उसमें ऐड करते जाते हैं और फिर हर इलाके की मुख्तलिफ होती चली जाती है हमारे यहाँ। तो मैंने ये देखा है कि आपने अपनी ज़ुबान को बहुत ही खालिस रखा हुआ है, बिल्कुल कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई हिंदी का तड़का आप नहीं लगाते उसमें, वो जैसे थी वो वैसे की वैसी है। क्या ऐसा ही है या ये मेरा गुमान है? तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें मैसेज कीजिए और ये भी बताइए कि क्या वाकई आप लोगों ने ये सोचा है कि हम अपनी ज़ुबान को बिल्कुल उसी तरह खालिस रखेंगे और इसमें किसी और ज़ुबान को शामिल नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल जैसी है वैसी ही रखेंगे। तो ज़रूर बताइएगा हमें और अपने कुछ कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। जी तारिक चुगताई साहब चूनिया से हैं। जी तारिक चुगताई साहब, आपका गीत तो मैंने पढ़ दिया, बल्कि अब शेर मैंने अंजुम को सुना दिया है, तो बताइए।
जी सर, मैं पंजाबी ची गल कर देना, कोई
बात चलो कर दियो, बतेरे बंदे ने जड़े पंजाबी समझ देने, कर दियो।
सर जी, अते सारे चुने बहन कौमी शाह ने सजमल कलीम ओना दा जेड़ा है जी, कमाल कर दियो बादशाह, किसे नु मारन दा सोचते हो, किसे ते मर दियो बादशाह,
कमाल कर दियो बादशाह,
मैं खिलाड़ी कमाल कर दियो बादशाह, मैं खिलाड़ी कमाल दा हां, आप भर दो बादशाह, कमाल कर दो बादशाह, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी ओरी पूरी टीम का, अल्लाह पाक तुहानू अपनी हिफाजत च रखे, इफ्तिमान च रखे, बहुत मेहरबानी।
अच्छा एक बात, अच्छा एक गल दस दे जाओ जाने तो पहले कि अंजुम आख रहा है कि बैकग्राउंड दसो ना मेनू, शेर तुसा क्यों डेडिकेट कीता है?
वो इस पर करके उनसे मोहब्बत जिनसे होती है, शिकायत उनसे होती है, वो मैंने अंजुम भाई खराब होंगे, बेवकूफों की गिनती होगी, पहली सब में जराब होंगे, यानी अंजुम भाई।
और हमें गिला है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम ये गिला करते हैं कि अंजुम आपको शायद तारिक चुगताई साहब ज्यादा पसंद हैं, तो आप और किसी की कॉल हो ना हो उनकी कॉल जरूर होती है। थैंक यू सो मच तारिक चुगताई साहब। और इससे पहले कि हम अगले कॉलर से बात करें, नजमा नौशाही जी मुसलसल मैसेज किए जा रही हैं। नजमा नौशाही जी, मैं माजरत चाहती हूँ, लिखती हैं, उस वक्त तेरे दिल में बड़ा दर्द उठेगा, उस वक्त तेरे दिल में बड़ा दर्द उठेगा जब मुझसे बिछड़ कर मेरे हमनाम मिलेंगे। वैसे बात तो आपने बड़ी पते की है, जब वो लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं उनका नाम कहीं पर लिया जाता है या उन जैसा नाम का बंदा, उन जैसे नाम का बंदा हमारे सामने आता है तो तकलीफ तो होती है। बड़ा अच्छा शेर आपने लिखा है और आपने हमें शायद कुछ भेजा है लिख के आवाज़ में, वो अब चूंकि मैं फ़ोन से अब कर नहीं सकती तो बाद में सुनूँ क्योंकि आप क्या कहना चाहती हैं। तो हम अगले गीत की तरफ चलते हैं, ये इसकी फरमाइश मुझे याद है, चले कॉलर, हाँ जुम कहते पहले कॉलर्स ले लें, उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाते। चले बात करते हैं हम अपने ग़ुलाम फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी गुलाम फारूक साहब, कहिए।
हेलो बाजी। हाँ बाजी, बाजी मैं शहरवाई कानी से बात कर रहा हूँ।
जी जी बोलिए।
और गाने की फरमाइश है बाजी।
बोलिए।
हेलो।
हाँ बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ।
फरमाइश है अरशद मोमिन साहब का गाना सुनाओ बाजी।
कौन से वाला?
अरशद मोमिन का, यो देखा के चेहरा तेरा, मौसम प्यारा लगा, कानों में झिनके तेरे मुझको सितारा लगा।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जरूर सुनवा देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हमारे अगले कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सेठ मुमताज अंजुम सरगोधा से।
جی باجی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پھول جتنے بہار میں ہوں گے سب تیرے انتظار میں ہوں گے.
زبردست.
پھول جتنے بہار میں ہوں گے سب تیرے انتظار میں ہوں گے, سارے آئیں گے خیر مقدم کو, ہم بڑا شمار میں ہوں گے. ابھی باجی آپ کہہ رہی تھی نا کہ اتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آواز امریکہ والے بھی ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں, ہماری بات کو بھی سنتے ہیں. سچی بات ہے, جتنے لوگ ہیں نا ہمارے اینلسٹ جرنلسٹ یا تجزیہ نگار, وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں جب آپ سے کال ان کی مل جاتی ہے نا کسی بھی پروگرام میں. لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کچھ پروگراموں کا وقت پہلے زیادہ تھا.
اچھا.
اور اس میں لوگ خطوں کے جواب بھی تھے نا, وہ باجی منفرد کرتی تھی, اس میں بھی ٹائم کم ہو گیا. انہوں نے بھی مہمان لگانے آنے زیادہ شروع کر دیے. ہماری بہن ابھی اس میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوئی, مجمع نشائی صاحبہ اور اچھا انجم بھائی کی بات تھی کیا گل صاحب کی, وہ تو اتنے مشفیق ہیں نا, اتنی سفر فرماتے ہیں, کبھی ہم ریکویسٹ کرے تھے بیک کال بھی کر دیتے ہیں. سچی بات ہے,
نہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں, آپ یقین کیجیے, آپ دیکھ لیجیے. جی بولیے.
کبھی ہماری طرف سے کبھی آپ کی طرح سستی ہو جائے تو کہتے محبتوں میں خطائیں تو ہو جاتی ہیں.
بالکل.
محبتوں کا تقاضا ہے درگزر کرنا. جی میں الجتا شاکر صاحب اور ڈاکٹر اعظم صاحب اور اپنی بہن اور ہمارے بھائی اس وقت آپ کا پروگرام سن رہے ہیں نا, تو آج کے اس پار بھی اور ادھر پورے یورپ میں پوچھتی ہوں میں ان کو حسب مراتب سلام عرض کرتا ہوں, اور کوئی اچھا سا آخری گانا
ٹھیک ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ممتاز انجم صاحب. اور جیسے ابھی آپ نے کہا جیسے شہناز کا شو تھا تو میں دیکھ رہی تھی کل, تو کوشش میں یہ کر رہی تھی کہ جنہوں نے ہمیں موبائل سے فون کیا ہے اور وہ کبھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں ہولڈ پہ رکھ دیں, مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ ان کا بل آ جائے گا, تو ہم ان کو کال کیوں نہ کر لیں. بعض دفعہ میں آپ کے نمبر نوٹ کر لیتی ہوں اور کال کر لیتی ہوں اور یہ سب ہم کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اہمیت دیتے ہیں آپ کو, تو آپ ہم سے ناراض مت ہوا کریں. تو جیسے ابھی سیٹ ممتاز انجم نے کہا ہے کہ کوئی بھی گانا تمام محبت کرنے والوں کے نام, تمام سننے والوں کے نام, تو سیٹ ممتاز انجم جی آپ کی طرف سے اگرچہ میں بھول گئی ہوں کہ اور کس نے فرمائش کی تھی یہ گیت تمام سننے والوں اور تمام محبت کرنے والوں کے نام.
جنت سے کم ہے ایک دل ربا ہے, دل حوروں سے کم ہے دنیا کسی کے پیار. جنت سے کم ہے ایک دل ربا ہے, دل حوروں سے کم ہے
खोल के उठा के देखो कलिया हंस पड़े पल के उठा के देखो कलिया
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे थे हमारा शो चार्ट बस्टर्स, क्योंकि अब जाने का वक्त करीब आया ही चाहता है। अशफाक समंदर कश्मीर से लिखते हैं कि मैं आपका शो सुन रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि कश्मीर में हमारे बहुत सारे लिसनर्स बड़ी पाबंदी और बड़ी बाकायदगी से हमारा शो सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों को ये बताती चलूँ, अभी सेट मुमताज़ अंजुम ने ख़तों की बात की, तो हफ्ते के दिन आपके ख़तों के जवाब अब मैं देती हूँ, अगरचे टाइम बहुत कम होता है, कभी 5 मिनट कभी 6 मिनट, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ख़त मैं शामिल कर सकूँ उतने कर लूँ उस शो में। तो आप हमारा हफ्ते के रोज़ तवील दौरानिए का जो शो होता है आपकी दुनिया, वो ज़रूर सुना करें। आपके टाइम के मुताबिक 8:30 के बाद किसी भी वक्त हम अपना ख़तों का जो हमारा प्रोग्राम होता है वो प्ले करते हैं, तो आप ज़रूर शामिल हो और हमें ख़त लिखें। 1353 हमारा पोस्ट बॉक्स है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो उसी तरह से आप लिखिए वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पोस्ट बॉक्स नंबर 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो आपके ख़त हम तक पहुँच जाएंगे, हम इंतज़ार करेंगे आपके ख़तों का। और कल जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हफ्ते के तवील दौरानिए के प्रोग्राम में हम 8:40 के बाद आपकी कॉल्स लेते हैं, और आज मैं आपको टॉपिक बताए देती हूँ। मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कीजिएगा अपने जवाबात, और हमें कल कॉल भी कीजिएगा 08007789 पर, और टॉपिक ये है कि अभी सिंध में इससे पहले बिल पास हुआ था कम उम्र की शादियों के बारे में, और उसकी एक हद मुकर्रर की गई शादी की 18 साल और उससे ज़्यादा, और अब भी एक सेनेट से बिल पास हुआ है इसी बारे में, और कई लोगों ने उसकी मुखालफत भी की है लेकिन इसके बावजूद बिल सेनेट से पास हो गया है। जब दोनों ऐवानों से पास होगा तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी। तो आप हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये बिल या फिर कम उम्र की शादी आपके ख्याल में उसके क्या नुकसानात हैं, और क्या एज होनी चाहिए शादी की, और लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं इसकी। आप हमें इस बारे में ज़रूर अपने ख्याल से आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर भी, और हमें कॉल करके भी। बहुत शुक्रिया सादिया ज़ेबरांझा, अंजुम हेरल्ड गिल को इजाज़त दीजिए, अगले जुमे को फिर हाजिर होंगे रमज़ान में, तब तक के लिए शौकत अली अंजुम डहरावाला से जिन्होंने फरमाइश की थी इस गीत की, उनके इस गीत के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। Thank you.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر پناہ کے متلاشی تارکین وطن کے ریلے سے نمٹنے کے لیے کانگریس سے اضافی 4.5 ارب ڈالر کے ہنگامی فنڈز کی درخواست کی ہے۔ یہ درخواست امیگریشن پر حالیہ انتظامی اقدامات کے ایک سلسلے کے بعد، جس میں پناہ کے پروسیس پر نئی پابندیاں شامل ہیں، ڈیموکریٹس کے ساری ساتھ جاری کشیدگیوں کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نمائندہ پیٹسی ویتکا سوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے اضافی ہنگامی فنڈز کے لیے 4.5 ارب ڈالرز کی درخواست کر رہی ہے تاکہ وہ اس مسئلے سے نمٹ سکے جسے وہ تارکین وطن سے متعلق انسانی ہمدردی کا بحران کہتی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیوین میکلینن نے منگل کے روز کانگریس کے سامنے گواہی دیتے ہوئے کہا، ہم جس پیمانے کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے تحت ہم اپنے وسائل اس مالی سال کے اختتام سے قبل ختم کر دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیوین میکلینن کے۔ اس ہفتے کے شروع میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک بار پھر پناہ کے بہت سے متلاشیوں، ان افراد کے محرکات کے بارے میں سوال اٹھائے تھے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ جنگ، تشدد یا سیاسی جور و ستم کی وجہ سے فرار ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ایڈوائزر کیلیان کانوے کا کہنا تھا،
Not every claim is credible. Some claims are credible, and we don't want those who have a credible claim of fear and asylum to be hamstrung in the process by those who don't.
ہر دعویٰ مستند نہیں ہے، کچھ دعوے مستند ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جن کے خوف اور پناہ کے دعوے مستند ہیں وہ ضابطوں کی کارروائی میں ان کی وجہ سے متاثر ہوں جن کے دعوے مستند نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر کیلیان کانوے کے۔ سن 2018 میں 65,000 لوگوں نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر پناہ کی درخواست دی تھی۔ پناہ کے متلاشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے عہدیداروں کو موجودہ تقاضوں کو سخت تر کرنے کے غرض سے نئے ضابطے پیش کرنے کے لیے 90 دن کا وقت دیا ہے۔ ان تجاویز میں ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے لیے ورک پرمٹ کا حصول مشکل بنانا شامل ہے، اور پناہ کے متلاشیوں کے لیے ایک فیس مقرر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو ایک ایسا اقدام ہے جو قانونی تو ہے لیکن ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی اسکول آف لا میں امیگریشن لا کی استاد کارلا میکینڈرز کا کہنا ہے،
Most people understand that refugees and asylum seekers are very vulnerable populations and they usually flee their countries without any money.
بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ پناہ گزین اور پناہ کے متلاشی آبادی کے بہت کمزور طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اکثر اپنے ملک سے کسی نقدی کے بغیر فرار ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مس کارلا میکینڈرز کے۔ انتظامیہ اپنی پالیسیوں کے لیے انسانی ہمدردی سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتی ہے، تاہم اسکالرز کہتے ہیں کہ جب سے ٹرمپ نے منصب سنبھالا ہے انہوں نے اس مسئلے پر گہرا اختلاف دیکھا ہے۔ یونیورسٹی آف بفلو کے قانون کے پروفیسر رک سو کہتے ہیں،
There's one side that believes that there is in fact a lot of persecution out there and that United States have an obligation to sort of protect people which we didn't do during World War II.
ایک جانب وہ ہیں جن کا خیال ہے کہ وہاں واقعی بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو تحفظ دے جو ہم نے دوسری عالمی جنگ کے دوران نہیں دیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا نظام ہے جس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی سسٹم کے کسی زخم سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی غلط دعویٰ کر رہا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنے دیا جانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر رک سو کے۔ ٹرمپ، جنہوں نے 2016 میں امیگریشن پر سخت ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر انتخاب لڑا تھا اور جیتا تھا، سن 2020 میں دوبارہ انتخاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور تجزیہ کاروں کے بقول وہ ہر قیمت پر اپنی انتخابی مہم کے کچھ وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ کی جانب سے اضافی ہنگامی فنڈز کی درخواست میں سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے رقم شامل نہیں ہوگی جو ان کا ایک اہم انتخابی وعدہ تھا، تاہم پھر بھی ایسا کوئی امکان نہیں دکھائی دیتا کہ ڈیموکریٹک کنٹرول کا ایوان نمائندگان اس درخواست کو کسی رد و بدل کے بغیر منظور کر لے گا۔ اسی دوران توقع ہے کہ پناہ سے متعلق صدر ٹرمپ کی تجاویز کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔